सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट चेकलिस्ट सीरीज. तो पहला वाला एस ब्लॉक का चेकलिस्ट है. तो एस ब्लॉक में चेकलिस्ट में पहला तो फर्स्ट ग्रुप में जो एल्कली मेटल्स होते हैं, तो उनका उनका क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SN1 होता है. सेकंड ग्रुप का SN2 होता है. मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. क्यों डिक्रीज होता है मुझे नहीं पता, बट डिक्रीज़ होता है. और मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज़ होने के साथ जैसे जैसे मतलब मेटेलिक बॉन्ड पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो वो हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एनर्जी एनर्जी. तो मेटेलिक बॉन्ड को से रिलेट करना, मतलब अगर एस ब्लॉक में कहीं पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी से, तो दिमाग में खटक से क्लिक करना चाहिए मेटेलिक बॉन्ड. मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेम टेस्ट. फ्लेम टेस्ट लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का गोल्डन वेलो, पोटेशियम का वाओलेट, मतलब क्रिम्सन रेड, गोल्डन वेलो, वाओलेट, रोबिडियम का रेड वाओलेट और सीजियम का ब्लू. सीक्वेंस में रेड वेलो वाओलेट वाओलेट रेड वाओलेट और ब्लू सीक्वेंस में याद करना हो जाएगा, याद तो हो बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो भी क्या कर सकते हैं. और कैल्शियम होता है तो ब्रिक रेड होता है, स्ट्रॉन्शियम होता है रेड, क्रिम्सन रेड, मतलब अब तो एक ब्रिक और क्रिम्सन अलग अलग करना पड़ेगा. तो कैल्शियम का ब्रिक रेड और स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड और अब बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है. फिर डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस होता है. एक एक्सेप्शन है कि पोटेशियम, मतलब सोडियम का पोटेशियम से ज़्यादा होता है, बस याद रखना. डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, ख़त्म. तो सेकंड ग्रुप में अब ये मतलब सेकंड ग्रुप में भी एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब जैसे कि बेरिलियम से कैल्शियम तक डिक्रीज़ होता है, फिर कैल्शियम से बेरियम तक इंक्रीज़ होते जाता है. मतलब इसे भी बस एक ही एक्सेप्शन है कि यार बेरिलियम बड़ा ज़्यादा डेंस होता है मतलब कैल्शियम से, ख़त्म. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी में मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, तो पहला पहला केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विथ एयर. तो रिएक्शन विथ एयर में ऑक्साइड ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो परऑक्साइड बनाते हैं, परऑक्साइड परऑक्साइड रिएक्शन करने से सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. तो बस लिथियम ओनली ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड तक बना देता है, मतलब ऑक्साइड के बाद वो परऑक्साइड तक भी अलाउ कर देता है, चलो बना भी ले परऑक्साइड ही बना ले. और जो सोडियम और रुबिडियम और सीजियम ये लोग सुपर ऑक्साइड तक भी अलाउ करते हैं, यार सुपर ऑक्साइड ही बना ले कोई चिंता नहीं की बात नहीं है. बट लिथियम परऑक्साइड तक भी नहीं देता है और सुपर ऑक्साइड तो देना ही चांस ही नहीं है, मतलब सुपर ऑक्साइड भी नहीं देता है लिथियम, और सोडियम परऑक्साइड तक देता है. ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियस सा बात है, मोनोऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है परऑक्साइड से, फिर परऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है सुपर ऑक्साइड से. ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, जो ज़्यादा अनस्टेबल उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, तो सुपर ऑक्साइड सबसे ज़्यादा, फिर परऑक्साइड, फिर मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में. तो फिर आता है रिएक्टिविटी विद वाटर. रिएक्टिविटी विद वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मेटल जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो पहले मोनोऑक्साइड बनाता है. मोनोऑक्साइड जब वाटर, मतलब मोनोऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करो तो परऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन करते तो सुपर ऑक्साइड. मतलब मोनोऑक्साइड बोलने से M2O, परऑक्साइड बोलने से M2O2 और सुपर ऑक्साइड बोलने से MO2. मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ये 2-1 और -1 होने से, इसमें 1 होने से और इसमें 2 होने से, मतलब 1/2 देख लेना यार, ख़त्म. जो फिर अगर सुपर मतलब मोनोऑक्साइड में अगर वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है, और फिर हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है. ठीक है, निकल गया, बढ़िया बात. लिथियम हाइड्रोक्साइड ये ओनली ऐसा है, मतलब पूरे के पूरे ब्लॉक में, मैं एस ब्लॉक बोल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट ग्रुप में ये अकेला ऐसा है जिसका हाइड्रोक्साइड टूट जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है. लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो लिथियम मोनोऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा. और बाकी जो फर्स्ट ग्रुप के अल्कली नहीं, अर्थ मेटल, क्या बोल रहा हूँ यार, फर्स्ट ग्रुप के खाली लिथियम हाइड्रोक्साइड ही टूटता है और कोई नहीं टूटता है, ख़त्म. फिर डाइहाइड्रोजन कैसे रिएक्शन होता है, तो MH बनता है यार, पता है मेटल हाइड्राइड, ये नहीं पता होगा क्या. ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, फिर मेटल हैलाइड से रिएक्शन करने से MX बन जाता है, ख़त्म. और फिर मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जब भी HX के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हैलाइड बनाते हैं, वाटर और C2 निकालते हैं. कौन कौन से कौन कौन रिएक्ट करने से, जब मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट चार दिखा. HX के साथ रिएक्शन करने से मेटल हैलाइड बनाएंगे और वाटर और कार्बन निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया बात. आगे बढ़ो, आगे लिथियम के हैलाइड जो होते हैं यही खाली हाइली कोवेलेंट होता है एक्सेप्ट फ्लोराइड. हैं, मतलब लिथियम के हैलाइड जो होते हैं वो हाइली कोवेलेंट होते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, बट लिथियम जो फ्लोराइड है वो क्योंकि उस दोनों का रेडियस छोटा छोटा है, मतलब क्योंकि हैलाइड क्यों होता है, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है तो वो अट्रैक्ट करके कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा देता है, बट लिथियम फ्लोराइड के केस में दोनों ही छोटे हैं, आप क्या ही खींचेगा उससे, तो वो एक्सेप्शन में बैठ जाता है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो लिथियम हैलाइड के फ्लोरिन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनका हाईली कोवेलेंट होता है, और कोवेलेंट होने के कारण ये हो जाते हैं, क्या क्या हो जाते हैं, ये लोग पोलर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये लोग ही बस पॉलीहैलाइड बनाते हैं, और बाकी मतलब लिथियम और ये कौन सोडियम को पॉलीहैलाइड नहीं बनाते हैं, पोटेशियम से लेके लास्ट तक वो लोग मतलब पॉलीहैलाइड्स बना देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर होते हैं इनके, ड्यू टू हाई SOP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है, और लो SRP होता है, तो ये लोग बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है पहले लिथियम आता है, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम, मतलब रूबिडियम सीजियम और पोटेशियम का लगभग सेम होता है, और सबसे लीस्ट होता है सोडियम, ये क्यों होता है क्या पता है, लेकिन होता है सबसे लीस्ट सोडियम आता है, सोडियम सबसे लीस्ट होता है, लिथियम सबसे पहला होता है, मतलब पहला दो एलिमेंट ये बॉर्डर एलिमेंट है, लिथियम सबसे ज़्यादा होता है, सोडियम सबसे कम, बीच के तीनों जितने बचे वो सबके इक्वल बराबर आस पास है सब, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, ये भी पॉइंट है कि यार SOP वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डन। तो फिर सब्लिमेशन SOP वैल्यू, सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, मतलब SOP वैल्यू कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कोई फालतू का चीज़ यार क्या करना, सब्लिमेशन एनर्जी ने हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, खत्म, क्या कर लोगे यहाँ के। तो फिर लिथियम, लिथियम का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लिथियम का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सॉल्युबल इन एमोनिया होता है, मतलब एमोनिया में सॉल्युबल हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। और फिर क्या होते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया जब मतलब मेटल के साथ लिक्विड अमोनिया मिलाएंगी तो एक एमोनिएटेड कैटायन बनेगा और एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पे इतना सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, मतलब जैसे कि ड्यू टू एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसी के वजह से ब्लू कलर आता है अपने पे अपने पास, अगर अगर लिक्विड अमोनिया जो है वो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो तो कॉपर ब्रोंच आता है, और डाइल्यूट हो तो ब्लू आता है, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेट होगा तो कॉपर ब्रोंच आता है, डाइल्यूट होगा तो मतलब ये ब्लू ही आता है, और इसी के वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये रेडिली डिकम्पोज हो जाता है NH2- और हाइड्रोजन गैस निकलता है यहाँ से, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी आता है, मतलब इसी के वजह से होता है, एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब जो सल्फेट में लिथियम सल्फेट ही ऑक्सीडाइज होता है लिथियम ऑक्साइड और SO3 में, फिर SO3 SO2 फर्दर SO2 और O2 में निकल जाता है, बस मतलब ये पॉइंट ये है कि यार बस यही लिथियम सल्फेट ही डिकम्पोज होता है, बाकी कोई डिकम्पोज नहीं होते, कोई कोई मतलब उनको हीट करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सल्फेट सल्फेट ही बना रहते हैं, लिथियम का अलग ही स्वैग है। तो नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड ग्रुप, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, बेरिलियम को काटेंगे तो टार्निस एयर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, हो जाने दे को क्या, मतलब बेरिलियम ही स्टेबल ओनली, मतलब लिखा है NCERT में कि बेरिलियम ओनली स्टेबल है, बाकी सब टार्निश हो जाते हैं, मतलब जैसे ही काटेगा तो टार्निश हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दैट्स इट। तो बट बेरिलियम स्टेबल है, बट फिर भी ऐसा होता नहीं, भाड़ में क्या होता है नहीं होता, अपने मतलब नहीं, NCERT में दिया नहीं होता है तो नहीं होता है, खत्म बात। तो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, तो ये बेरिलियम ऑक्साइड एम्फेटर, मतलब बेसिक रेडर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उसके नीचे जितने भी होते हैं सब बेसिक नेचर के होते हैं, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जय माता दी। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फेटेरिक होता है, डन। फिर आता है मेटल प्लस N2, तो ये नाइट्राइड बनाते हैं, M3N2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, M3N2, बट मेटल प्लस H2 मेटल क्या पढ़ रहा हूँ, हाँ चल, मेटल प्लस H2 मेटल हाइड्राइड बनाता है, एक्सेप्ट मतलब सेकंड ग्रुप का बात चल रहा है ना, फर्स्ट ग्रुप खत्म हो चुका है, तो सेकंड ग्रुप में मेटल प्लस हाइड्राइड करेंगे तो मेटल हाइड्राइड बनेगा, लेकिन बेरिलियम मैं हाइड्राइड नहीं बनाऊंगा, बोलता है भाई अपन नहीं बनाते मेटल हाइड्राइड, ये लोग मेटल हाइड्राइड बट मेटल हाइड्राइड बनते हैं डायरेक्ट रिएक्शन से, नहीं बनते मेटल मेटल प्लस हाइड्राइड, मेटल मेटल जब H2 के साथ रिएक्शन करेगा तब मेटल हाइड्राइड बनेगा, बाकी सब के साथ बनेगा, बस बेरिल सेकेंड ग्रुप में। बेरिलियम बोलेगा भाई अपन नहीं बन रहे यहाँ से, अपन बनेंगे अलग कोई रिएक्शन से, तो बेरिलियम क्लोराइड उसके लिए कुछ अलग रिएक्शन व्यवस्था करा गया, तो बेरिलियम क्लोराइड और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, देख रहे हो VIP ट्रीटमेंट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करेंगे तब BH2 बनता है, BeH2 बनता है बेरिलियम हाइड्राइड। तो BeH2 का कैसा शेप होता है, थ्री थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, यानी कि पॉलीमर स्ट्रक्चर में होता है, तो मतलब तीन बेरिलियम यूज होते हैं एक साथ, बनाना बॉन्ड टाइप बन जाते हैं, बन जाने दो अपने को क्या। तो अब क्वेश्चन आते हैं, मतलब BeCl2 जो होता है, मतलब मेटल क्लोराइड बनेगा ये तो पता ही है, BeCl2 के कॉम स्ट्रक्चर हमको पढ़ना होता है। तो BeCl2 जो होता है सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर चेन होता है, पूरा बड़ा बड़ा पॉलीमर चेन, और हाई टेम्परेचर पे ये दो डाइमर बोलते हैं, मतलब दो ठो ही लटके रहते हैं बेरिलियम, और मतलब अगर एवो 1200 केल्विन, मतलब 1200 केल्विन के फाड़ के आगे निकल जाते हो तो एक ही कंपाउंड बचता है भाई, और क्या करेगा इतना टेम्परेचर दे, देखो सारा ही बॉन्ड टूट जाएगा। तो बेरिलियम Cl2 बनता है वन लीनियर से, वो होता है पूरा फ्लैट खत्म। तो फिर आते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड पे, ऑक्सो एसिड कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या ही पता ही है यार। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन का क्या, ये कैल्शियम नाइट्राइट मतलब CaNO3 2, कैल्शियम नाइट्राइट को अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस NO2 बनेगा। NO2 का बारे में ये है कि NO2 पैरामैग्नेटिक होता है, बट इसको कूल करने पर N2O4 बन जाता है, वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। भाई केमिस्ट्री का अपना ही जिंदगी है यार, मज़े आ जाते हैं, ठंडा करो डायमैग्नेटिक, गर्म करो पैरामैग्नेटिक, बढ़िया है। और फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करो तो कैल्शियम, ये तो हो गया ना, ये वो वाला जो क्या था हार्ड वाटर में होता है ना, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बो बाइकार्बोनेट, हाँ, तो वहाँ हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट नीचे PPT बन जाता है, हार्ड वाटर चला जाता है, वाटर निकल जाता है, मज़े आ जाते हैं। फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो लिथियम का कुछ अपना ही स्वैग वाला बिहेवियर क्या क्या है, तो लिथियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, हाँ ठीक है, क्या हो गया इससे, हाँ ठीक है, लिथियम इससे रिएक्शन नहीं देता है किससे, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, YNE, यानी इससे रिएक्शन नहीं देता, टर्मिनल टर्मिनल इथाइन से लिथियम रिएक्शन नहीं कराता है। और फिर Li2SO4, नो डबल सॉल्ट फॉर्म क्या, हाँ डबल सॉल्ट कोई नहीं बनाता, क्या पता क्या क्या बोल रहा है। अब डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम और मैग्नीशियम में आता है कि ये क्लोराइड कोवेलेंट होते हैं, मतलब दोनों के क्लोराइड कोवेलेंट होते हैं, दोनों दोनों नाइट्राइड N2 के साथ रिएक्शन कर जाते हैं लिथियम और मैग्नीशियम, और N3 मतलब M3N2 बनाते हैं, और फिर जब क्या, नहीं M3N2 नहीं बनाते हैं यार, क्या बनाते थे यार, रुकिए मैं चेक कर, हाँ लिथियम मतलब लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके M3N बनाता है, और बेरिलियम रिएक्शन करके M3N2 बनाता है, मतलब वैलेंसी वाला एक फैक्टर है चीज़ खत्म। और लिथियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर, लेकिन ये खाली लिखा है कि लिथियम और मैग्नीशियम डिकम्पोज होते हैं, ठीक है हम लोग क्या करना है। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का स्वैग देखेंगे, बेरिलियम क्या करते हैं, बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फेटोरिक होते हैं, भाई साहब के स्वैग हैं। और बेरिलियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कोई फ्लेम पे असर नहीं पड़ता भाई, अपन कोई कलर नहीं दे रहे बोलता है, इसको फ्लेम टेस्ट देने से कोई कलर नहीं दूंगा भाई, मेरा स्वैग। फिर आता है, फिर बेरिलियम को कॉमेक्स कॉम्प्लेक्स बनाता है, बेरियम कॉम्प्लेक्स भी बना देता है, ओह मज़े आ गया। फिर आता है इसका हाइस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर डायगोनल रिलेशनशिप, फिर नेक्स्ट टॉपिक डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट के, कोवेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट जेनेटा जो भी होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, बोथ NaOH के डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत जन होते हैं यार, हाँ ठीक है ये लोग ही होते हैं होंगे, थोड़े से स्वैग है इनका। तो फिर तो क्या होते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के दोनों के दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं NaOH में, दोनों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फेटोरिक नेचर के होते हैं, और बेरिलियम और या फिर एल्यूमिनियम N2 रिएक्शन करके BE3N2 बनाते हैं, मजे आ जाते हैं।